जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्णा न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर ना ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरी हरी बोल एवरीवन हरी हरी बोल जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब अपने आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ हो गया है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी हमारी आध्यात्मिक यात्रा ऐसी हमारी तीर्थ यात्रा हमारी आरंभ हो चुकी है। सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्णा का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे कि परमात्मा हम सबकी बुद्धि में विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनकी इंस्ट्रक्शंस को उनके गीत को अच्छे से समझ सके और अपने जीवन में भी उतार सके। फ्रेंड जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली है ना, ये चैप्टर हम आरंभ कर चुके हैं और इसमें हमने 2 ही श्लोक किए थे है ना, तो उनको हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखो चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा कि अर्जुन कंफ्यूज्ड है ना, भ्रमित है वो, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। चैप्टर 1 में हमने अच्छे से समझा इसको और अब हम अध्याय 2 में पहुंच रहे हैं। तो चैप्टर 2 में प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन यानी कि उसने शरणागति की शुरुआत कर दी है, अभी उसने शुरुआत की है। तो उसने मान लिया है कि भगवान के सामने कि वो अपनी ड्यूटीज से पीछे हट रहा है ना। तो चैप्टर 1 में अर्जुन अपनी बातें बताना चाहता था, वो भगवान से समझना नहीं चाहता था, सिर्फ वो अपनी बात कर रहा है। चैप्टर 1 में अर्जुन ही बात कर रहा है ना, अपने मन की बातें भगवान को समझा रहा है। मेजॉरिटी लोग जो धार्मिक होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं वो होते हैं चैप्टर 1 में, क्योंकि वो भगवान के पास सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जाते हैं, भगवान की शरण लेने के लिए नहीं जाते है ना, भगवान से कोई गाइडेंस नहीं लेना चाहता चैप्टर 1 में है ना। वो क्या कहता है चैप्टर 1 में एक व्यक्ति कि भगवान मैं 500 एकड़ रुपए चढ़ाऊंगी, मैं मिठाई चढ़ाऊंगी ताकि मेरा बिजनेस में फायदा हो जाए है ना, या फिर मेरे हस्बैंड की जॉब लग जाए, या फिर मेरा बेटा IIT का एग्जाम निकाल ले, या पर्टिकुलर व्यक्ति से मेरी शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, मतलब भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो। चैप्टर 1 में हम ऐसी भक्ति करते हैं और चैप्टर 1 के ही मेजोरिटी लोग है समाज में। तो फिर आगे हमने किया अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली है ना, उसमें हमने 2 वर्सेस किए। जब वो अपना धनुष बाण त्याग देते हैं तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, श्लोक नंबर 3 में भगवान समझा रहे हैं कि भाई एक्चुअली अर्जुन को क्या लग रहा है कि अर्जुन मोह के कारण उसे लग रहा है कि अगर मैं युद्ध करूंगा अपने रिलेटिव्स के साथ तो वो अधर्म हो जाएगा और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये धर्म है ना। तो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है अर्जुन, ये तो नपुंसकता है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को त्याग दो छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये तुम्हारे हृदय की कमजोरी है, कोई शूरवीरता नहीं है ना। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारे सामने जो युद्ध रूप कर्तव्य है ना, यही तुम्हारा कर्म है, युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्म है। इसलिए भगवान अर्जुन को 3rd श्लोक में समझा रहे हैं, 3rd वर्ष में समझा रहे हैं कि उठो खड़े हो जाओ और युद्ध का अपने कर्तव्य का पालन करो। अब यहां से हमने आगे कैसे बढ़ना है ना, अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं। भगवान हमें जो प्रार्थना अर्जुन ने की 7th श्लोक में, अर्जुन सरेंडर कर रहा है ना अब है ना, तो वो प्रार्थना कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि प्रभु मैं मूर्ख हूँ है ना, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं भ्रमित हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, प्लीज आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे अपना उपदेश दीजिए। तो जो अर्जुन का ये जो भाव है ना फ्रेंड्स, इसी भाव से हमें भी जीवन जीना है और इसी भाव से हमें भगवद गीता का अध्ययन भी करना है। चाहे देखो दुनियादारी के एंगल से आप बहुत सक्सेसफुल हो, मान लो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या मिनिस्टर हो, लेकिन जब भगवान से कनेक्शन जोड़ रहे हैं ना हम, तो जहां पर भगवान है वहां पे हमें विनम्र हो जाना है, झोली फैलानी है अपनी भगवान के आगे कि हे भगवान, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है, और मेरे शुभ चिंतक सिर्फ और सिर्फ आप हो, है ना। क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि मुझे अपने मूड को कैसे हैंडल करना है, मेरा मूड क्यों खराब हो गया, मुझे तो ये भी नहीं पता होता, मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, मुझे ये भी नहीं पता, है ना। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुझे नहीं आता प्रभु, और ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, क्या ये कॉन्सेप्ट हमें पता है ना। तो मुझे तो इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता, मैं अपना एंगर ही मैनेज नहीं कर पाती, मूड ही अपना मैनेज नहीं कर पाती, सिर्फ करती क्या हूँ, भगवान के मंदिर में जाती हूँ और सिर्फ चीजें मांगती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुखी रहती हूँ, क्योंकि अगर वो चीजें भी मुझे अगर मिल जाती हैं तब भी मैं खुश नहीं होती, मुझे लगता है कि नहीं कुछ और मिला होता तो शायद मैं खुश हो जाती, है ना, फिर मैं कुछ और मांगने शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह की भक्ति करते हैं हम, है ना। तो चैप्टर 2 में 7 श्लोक में अर्जुन भगवान को क्या कह रहा है, हे प्रभु मैं मूर्ख हूँ और आप मेरे गुरु बन जाइए। देखो फ्रेंड्स, अर्जुन की इस प्रार्थना में हम क्या समझ सकते हैं, हमें लगता है कि अब यह कलयुग चल रहा है, हम किसे गुरु बनाएं, तो भगवान क्लियरली देखो बता रहे हैं कि भगवान को बनाओ ना अपना गुरु, है ना। जैसे अर्जुन ने अपने परम मित्र श्री कृष्ण भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया, है ना, और शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की अर्जुन ने शरण ग्रहण कर ली। आपको भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि जल्दी वे शोक से बाहर निकल आएगा, है ना, और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन भी बोलते हैं जिसको, के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर फिर वे युद्ध लड़ेगा। तो भगवान हमारे चैत्य गुरु है, तो अगर हम उनसे सच्ची गाइडेंस मांगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आप उन्हें अगर सच्चे गुरु बनाते हो, तो भगवत गीता के ज्ञान की एंट्री प्रभु किसी ना किसी माध्यम से आपके जीवन में जरूर करवाएंगे। तो जब अर्जुन ने विनम्र होकर शरणागति का प्रयास किया तो उसका मोह दूर होने शुरू हो जाएगा। एक बात और है फ्रेंड्स कि अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का रिश्ता भी बदल रहा है। इससे पहले चैप्टर 1 में अर्जुन भगवान को सारी बातें बता रहा था कि युद्ध करूंगा तो दुख मिलेगा और नहीं करूंगा तो शायद मैं खुश रहूंगा, है ना। तो चैप्टर 1 में अर्जुन भगवान को मित्र मान रहा था, अब चैप्टर 2 में ये रिश्ता गुरु और शिष्य का है। अर्जुन अब भगवान से मित्रतापूर्ण बातें करना बंद करता है, क्योंकि जब गुरु और शिष्य की बातें होती हैं तो फ्रेंड्स वो गंभीर बातें होती हैं, सीरियस बातें होती हैं। हम अपने गुरु से, भगवान से कुछ भी बातें थोड़ी करते हैं, और अब अर्जुन भी अपने गुरु के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के आदि गुरु हैं और अर्जुन भगवद गीता समझने वाला उनका शिष्य है, और चेंज क्या हो रहा है यहाँ से, अब उनका रिलेशन गुरु और शिष्य का बन रहा है। पहले मित्रता का रिलेशन था, अब उनका रिलेशन गुरु और शिष्य का बन रहा है। देखो जब अर्जुन ने भगवान को गुरु रूप में देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु की भूमिका को स्वीकार किया, क्योंकि एक शिष्य जानता है फ्रेंड्स कि मेरे गुरु को मुझसे ज्यादा पता है ना। तो अब यहाँ से भाव बदल गया। अब एक फ्रेंड होता है, फ्रेंड को तो हम कुछ भी बोल लेते हैं, है ना, हम झगड़ भी लेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, लेकिन भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ हम सोच समझ के बातें करते हैं, है ना। और अर्जुन को चाहिए भी वो रिलेशन, अब उसको मित्रता से ऊपर का कुछ रिलेशन चाहिए, है ना। तो वो भगवान को गुरु रूप में देख रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो अगर हम स्कूल में जाते हैं तो अगर हमें वहां टीचर बोलते हैं कि ए फॉर एप्पल, तो क्या हम झगड़ा करते हैं, हम मान लेते हैं ना उनकी बात, क्योंकि वो टीचर है तो हमें लगता है कि ए फॉर एप्पल जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। तो जो गुरु बोलते हैं, जो भगवान बोलते हैं, उसको शिष्य ग्रहण करते हैं। किसी भी बात को सीखोगे ना, जब हमें लगता है कि दूसरा मुझसे ज्यादा जानता है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप वकील बने, जूनियर वकील बने, किसी सीनियर वकील के साथ आपको ट्रेनिंग करने को मिल गई मान लो, तो आप मानोगे ना कि उसको ज्यादा पता है, जो सालों से इस प्रोफेशन में है उसको ऑब्वियस बात है कि उसको ज्यादा पता है। लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं नहीं मुझे ज्यादा पता है, इसकी गाइडेंस मुझे नहीं लेनी चाहिए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें लगा कि मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही बेस्ट हूँ, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम सोच लेना कि एक बच्चे से भी हमें कुछ सीखना है ना, अपने माइंड को हमेशा ओपन रखे, है ना, सीखने वाले जोन में हमेशा रहे, है ना, तो भगवान हमें जो भी राइट नॉलेज है हमें भगवान वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। हर फील्ड में ऐसा ही होता है, जो प्रोफेसर होते हैं जो वो कहते हैं हम उनकी बात मानते हैं, है ना। तो वैसे ही अब अर्जुन भगवान को अब गुरु रूप में देख रहा है। तो अब नेक्स्ट श्लोक है जो 11वां श्लोक, इसमें भगवान भगवद गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि भगवान ने क्या उपदेश दिया 11वें श्लोक में। हाँ जी ममता जी पढ़ लो 11वां श्लोक। हरि बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। अध्याय 2 श्लोक नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है, और बातें कर रहे हो विद्वानों जैसी, परंतु जो पंडित होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। श्लोक नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम शोक उन लोग के लिए कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं, और बातें कर रहे हो विद्वानों जैसी, परंतु जो पंडित होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हरी हरि बोल,
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। तो फ्रेंड्स देखो, अर्जुन शोक में है, डिप्रेस्ड है, मोह में। इस शोक को दूर करने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो कि इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम बातें तो विद्वानों जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातें तो अज्ञानों वाली है ना। भगवान कह रहे हैं कि एक तरफ तो तुम पंडितों वाली बात कर रहे हो, पंडित मतलब जो हमें मंदिर में दिखते हैं पुजारी वगैरह, उनकी बात नहीं हो रही है। पंडित जब भी बात होगी ना भगवद गीता में, पंडित मतलब जो एक विद्वान व्यक्ति होता है, एक जिसमें बहुत विजडम होती है ना, नॉलेजेबल पर्सन जिसको बोलते हैं, उनकी बात हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक तरफ तो तुम पंडित वाली बात कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम शोक कर रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम पंडित नहीं हो, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी शोक नहीं करते। जो पंडित होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना मृत के लिए शोक करते हैं। हमने समझा था फर्स्ट चैप्टर के 21वें श्लोक में कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, है ना। क्योंकि अर्जुन को समझना था कि आखिर किसके साथ मैं मुझे युद्ध करना है ना। देखो इसमें अर्जुन की एक क्वालिटी हमें पता लगती है कि अर्जुन लड़ने से पहले अपने शत्रु के बारे में भी जानना चाहते हैं। अगर हम देखें ना, सिर्फ जो पशु होते हैं ना फ्रेंड्स, सिर्फ पशु ही ऐसा करते हैं कि अगर सामने कोई चीज उनको लुभा रही है, है ना, जैसे शेर है उसको हिरण लुभा रहा है, तो शेर टूट पड़ेगा ना उसपे, कुछ नहीं सोचेगा वो थोड़ी उसके पास जाके उसके साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें करेगा, जाएगा उसके पास हिरण के पास कि उसको उस पे सीधे टूट पड़ेगा, है ना। तो आम व्यक्ति भी फ्रेंड्स एक पार्श्विक वृत्ति का होता है, बिना सोचे समझे चीजें करना, है ना, चीजें समझना, चाहे वो क्रोध के कारण हो, चाहे वो लोभ के कारण हो, ईर्ष्या के कारण हो, शत्रुता के कारण हो, है ना, या कुछ हम कोई इच्छा हो, ईगो के कारण हो, या मोह के कारण हो, या किसी भी चीज के कारण हो, है ना। हमें जो भी चीज चाहिए लाइफ में, कोई भी चीज हम अच्छी या बुरी करना चाहते हैं, तो क्या हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, है ना। हम बिना सोचे समझे फ्रेंड्स चीजों को पाना चाहते हैं, और भगवान से मांगते भी है वो चीजें कि भगवान प्लीज ये मेरी चीजें पूरी कर दो, मैं आपको मिठाई चढ़ाऊंगी, मैं आपको पैसे चढ़ाऊंगी। और अगर वो चीजें पूरी भी हो जाती हैं तब भी हम पछताते हैं, तब भी हम खुश तो हुए नहीं कभी भी ना। लेकिन अर्जुन फ्रेंड्स आम व्यक्ति नहीं है, हमारा जैसा नहीं है। अर्जुन बहुत नेक्स्ट लेवल की क्वालिटीज है उसमें, हम अर्जुन का 1% भी नहीं है फ्रेंड्स। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे जानना है, मुझे समझना है कि मैं किन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा हूँ, कौन मेरे खिलाफ है, है ना। तो 25th श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने रथ इंटेंशनली भीष्म पितामह जी और द्रोणाचार्य जी के आगे खड़ा कर दिया, है ना। भगवान जी ने सोच समझ कर रथ उनके सामने खड़ा किया ना, है ना, क्योंकि भगवान को पता है कि अर्जुन का उनके प्रति विशेष स्नेह है, और भीष्म पितामह जी और द्रोणाचार्य जी का भी अर्जुन के लिए विशेष स्नेह था, है ना। और भगवान को पता था कि अगर मैं रथ उनके सामने खड़ा करूंगा तो अब अर्जुन कंफ्यूज होगा, मोह में आएगा, है ना, तभी भगवत गीता कही जाएगी, है ना। तो ये तो होगी अर्जुन की बात, है ना। तो हम थोड़ा आम लोग क्या करते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति को ना शोक तब होता है जब वे ना अपने मन में ना चीजों को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो विवाह कर लेता है, मतलब दो पार्टीशन कर देता है। बचपन से ही उसको अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने, उसके आसपास के लोगों ने भी वैसा ही जीवन जिया होता है, तो माइंड में ही सोच लेते हैं, अच्छा ये मेरे अपने हैं और ये मेरे पराए हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये नहीं है, ये मेरी कास्ट के हैं, ये मेरी कास्ट के नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये तो मेरे भाई के बच्चे हैं या मेरी ब्रदर इन लॉ के बच्चे हैं, है ना। ये मेरा देश है, ये दूसरा देश है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने नहीं है, है ना, ये मेरे पक्ष के है, ये मेरे पक्ष के नहीं है। ये विभाजन फ्रेंड्स हमने अपने मन में किया होता है, इसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, ये हमने सोचा ही होता है पहले ही, है ना। और जो हमारे पक्ष के होते हैं, जो हमें लगता है सो कॉल्ड हमारे अपने हैं, उनसे हम एक्सेसिव अटैचमेंट्स बना लेते हैं, है ना। और इस एक्सेसिव अटैचमेंट के कारण ही फिर हमारे अंदर भय पैदा होता है, शोक पैदा होगा, चिंता पैदा होती है ना। जितनी एक्सेसिव अटैचमेंट्स हम रखते हैं, मोह पालते हैं, डिजायर्स रखते हैं, उसी के कारण फिर हमें क्या होता है, चिंता मिलती है, भय मिलता है, शोक मिलता है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं है, अर्जुन विलक्षण प्रवृत्ति का है, आम व्यक्ति नहीं है, हमारे जैसा नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कौरव पक्ष के लोग आम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये चूज हमने करना है कि हमने किस साइड जाना है, हमें अर्जुन की तरफ जाना है, भगवान श्री कृष्ण की तरफ जाना है, कि हमें दुर्योधन की तरफ जाना है, है ना। दो पक्ष हमेशा रहते हैं, ये हमने समझा था, भगवान श्री कृष्ण के टाइम भी में थे और आज कलयुग के जमाने में भी रहे हैं और हमेशा रहेंगे, है ना। देखो फिर हमने भगवद गीता के पहले ही श्लोक में क्या समझा था, धृतराष्ट्र क्या कहते हैं संजय से, संजय उनका सारथी था, है ना, मंत्री था। तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं संजय से कि युद्ध भूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। देखो फ्रेंड्स, पांडव धृतराष्ट्र को बहुत रिगार्ड करते थे क्योंकि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता पांडु के बड़े भाई होने के कारण पिता के समान ही समझते थे। लेकिन धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु के पुत्रों के लिए समान भाव नहीं थे। पांडवों को तो समान भाव था लेकिन धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु के पुत्रों के लिए समान भाव नहीं थे, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के लिए एक्सेसिव डिजायर्स, एक्सेसिव मोह। इसलिए उन्होंने पहले ही श्लोक में अपने पुत्रों के लिए मेरे पुत्र और पांडवों के लिए पांडु के पुत्रों से संबोधन किया था, है ना। इसी पक्षपात के कारण उन्होंने कहा कि ये मेरे अपने हैं और ये मेरे अपने नहीं है, मतलब पांडु के पुत्र मेरे नहीं है। क्योंकि ये बात हम समझ चुके हैं फ्रेंड्स कि जो भाव हमारे अंदर होते हैं ना, वही हमारी वाणी के द्वारा बाहर आ जाते हैं। कितनी भी कोशिश हम कर लें, कितनी भी छुपाने की हम कोशिश करें, वो वाइब्स, वो वाइब्रेशंस हम तक पहुंच जाती है फ्रेंड्स। जो रिलेशन हमारे बेटर नहीं होते दूसरों के साथ, है ना, उसका एक मेजर कारण ये है कि हम अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। देखो फ्रेंड, जो मोह धृतराष्ट्र में था वही मोह अर्जुन में भी पैदा हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया था। 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया था ना। लेकिन धृतराष्ट्र का मोह और अर्जुन का मोह फ्रेंड सेम नहीं था, समान नहीं था। मोह तो अर्जुन में भी था और धृतराष्ट्र में भी था, लेकिन दोनों के मोहों में जमीन आसमान का फर्क था फ्रेंड्स। इस फर्क को हमने समझ, हम बड़े आसानी से बोल देते हैं ना कि अर्जुन मोह में था, अर्जुन मोह में था, धृतराष्ट्र मोह में था, धृतराष्ट्र मोह में था। लेकिन दोनों के मोहों में बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, है ना। इसलिए अर्जुन 28वें श्लोक में कौरवों को भी स्वजन कहते हैं। मैं पढ़ देती हूँ आपको 28वें श्लोक में क्या कहा था उन्होंने। देखो 28वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की अभिलाषा रखने वाले स्वजनों को सामने देखकर मेरे अंग कंपित हो रहे हैं, वह मुख सूख रहा है, है ना। तो अर्जुन कौरवों को भी स्वजन कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन को खाली पांडवों से ही लगाव नहीं था, अपितु संपूर्ण कुरुवंशियों से लगाव था, अटैचमेंट थी। और इसी लगाव के कारण, इसी मोह के कारण अपने संबंधियों के मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा है। और इसी शोक को दूर करने के लिए 11वें श्लोक से भगवान गीता का उपदेश आरंभ करते हैं। इस श्लोक से भगवान गीता का उपदेश आरंभ करते हैं, है ना। भगवान अर्जुन के इस शोक को अनुचित मानते हैं, है ना। आगे भगवान समझाएंगे अर्जुन को कि मत शोक करो तुम, है ना। भगवान बताते हैं कि सारे कर्म मुझे समर्पित होकर करो, इसमें यह मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम सोचते हैं ना कि दूसरों से हमें सुख मिलेगा, लेकिन क्या मिला सुख हमें दूसरों से, होता उल्टा ही है। दूसरों से ही हमें शोक मिलता है और जितना ज्यादा क्लोज रिलेशन आपका उतने ही ज्यादा हमें दुख मिलते हैं उन रिलेशन से। और फिर जब हम भगवान को ऐड करते हैं अपने जीवन में, भगवान के कहे अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, भगवद गीता के ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बिताने शुरू करते हैं, तो क्या होता है, फिर हमारे सारे शोक, हमारे सारे चिंता, हमारे सारे संताप सब मिट जाते हैं, है ना। और फ्रेंड्स देखो इस श्लोक को फ्रेंड्स हम अपने लाइफ से कंपेयर करें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मैक्सिमम टाइम हम लोगों का तो पूरा जीवन ही शोक में, रोने धोने में निकल जाता है, है ना। हमें हर समय क्या लगता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, काश मैंने ये नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता, काश उस समय मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो ऐसा हो जाता, है ना। तो इस गिल्ट में भी हम लोग फ्रेंड्स कई कई साल हम निकाल देते हैं, है ना। या तो हम यही सोचते रहते हैं या फिर हम क्या सोचते हैं, मैं ही बेस्ट करती हूँ या करता हूँ, जो भी मैं करती हूँ बस मैं ही बेस्ट हूँ, दूसरे तो हमेशा ही गलत करते हैं, है ना। तो दोनों ही बातें सही नहीं है फ्रेंड्स। हमें करना क्या, हमें बैलेंस मेंटेन करना है फ्रेंड्स। जो कि हमें आता नहीं है. और अवर होल लाइफ डिपेंड्स अपॉन बैलेंस फ्रेंड्स. इस बात को समझना जानना बहुत जरूरी है ना. या फिर हम क्या सोचते हैं, अपनी लाइफ की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं दूसरे को ऐसा करना चाहिए. दूसरे के जीवन के बारे में हमें हर वक्त जानना है, हमें खुद का तो पता नहीं है, लेकिन दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है ये जानने की हमें हमेशा उत्सुकता बनी रहती है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है. और फिर अपना ज्ञान बांटने का कि उनको ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, अपनी लाइफ कैसे ठीक करनी है ना, अपनी लाइफ को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, अपने फैमिली की लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, अपनी बच्चों की लाइफ में मैं क्या शिक्षा दे सकती हूँ, कैसे मुझे उनकी अपब्रिंगिंग करनी चाहिए, उसकी कोई नॉलेज नहीं है. नाम सोचना चाह रहे हैं, कोई फोकस नहीं है. इसलिए क्या करते हैं फिर हम निंदा चुगली करते रहते हैं, क्योंकि बहुत हमारे पास टाइम है, क्योंकि खुद की लाइफ में तो इंटरेस्ट है नहीं है. ठीक कैसे करना है उसकी कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए चलो फोन उठाते हैं या चले गए किसी के घर और घंटों घंटों निंदा चुगली करते रहते हैं. अगर हम अपने को, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में अपनी एनर्जी लगाएंगे ना फ्रेंड्स, तो हम निंदा चुगली से भी हम बचे रहते हैं, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं होता. ऐसा लगता है हमारी लाइफ बहुत बिजी है, हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में हम लगे रहते हैं कि कैसे हम चीजों को ठीक ढंग से मैनेज कर पाए, है ना, कैसे हम बिजी रहे, है ना. जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है उसके द्वारा हम बिजी रहते हैं, है ना, अपने आप को इम्प्रूव करने में हम बिजी रहते हैं, तो हम फालतू की निंदा चुगली से, फालतू दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने से बचे रहते हैं. फ्रेंड्स देखो, जो भी हमारे लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आते हैं ना, जो भी सर्कमस्टांसेस आती हैं, चाहे अच्छे या बुरे, वे हमारी कर्मों का फल है. सिंपल बात है, आज जो हम है ना वो हमारे ही कर्मों का फल है. जो भी आज हमारी सिचुएशन है, हम जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, चाहे अच्छी सिचुएशन में है चाहे बुरी सिचुएशन में, ये हमारे ही कर्मों का फल है. सिंपल बात. तो हर अच्छी बुरी परिस्थिति को लेकर शो करना या सुखी या दुखी होना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है और कुछ नहीं है. जब पता ही लग गया कि भाई कोई भी सिचुएशन चाहे फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, वो मेरी वजह से है. लेकिन अगर हमें समझ आ गई चाहे सिचुएशंस फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल है, उनका आरंभ भी है और उनका अंत भी है. सेम सिचुएशन में थोड़ी हम फंसे रहेंगे. मान लो कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन आ गई लाइफ में, मान लो जॉब की कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, तो वो क्या शुरू से थी, है ना, या आई है कुछ टाइम के लिए, तो वो चली भी जाएगी ना वो प्रॉब्लम. या कोई अच्छी सिचुएशन आ गई लाइफ में, मान लो हमने 20 लाख की गाड़ी ले ली, है ना, या मान लो बहुत बड़ा घर ले लिया, तो वो क्या सिचुएशन हमेशा रहेगी, क्या हम इसी खुशी वाले जोन में हमेशा रहते हैं या दुखी वाले जोन में हमेशा रहते हैं, है ना. तो कोई भी परिस्थिति फ्रेंड्स हमेशा रहने वाली नहीं है, स्थायी नहीं है, है ना. चाहे अच्छी परिस्थिति हो या लाइफ में कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आ गई हो, अनुकूल परिस्थिति है या विपरीत परिस्थिति है, वो हमेशा के लिए नहीं आती फ्रेंड्स. कोई भी सिचुएशन स्थायी नहीं है, है ना. इसलिए भगवान हमें भगवत गीता के माध्यम से 2nd chapter में हमें ये लर्निंग दे रहे हैं, किसी भी फेवरेबल या अनफेवरेबल, अनुकूल या विपरीत परिस्थिति में खुश होना, एक्साइटेड हो जाना बहुत ज्यादा, या दुखी रहना, शो करते रहना, है ना, बहुत ज्यादा सुखी फील कर रहे हैं कुछ अच्छा हो गया तो, कुछ अनफेवरेबल हो जाए तो बहुत ज्यादा दुखी भी फील करते हैं, है ना. तो भगवान कह रहे हैं कि ये सिर्फ मूर्ख व्यक्ति की निशानी है. अगर आप भगवद गीता पढ़कर भी यही चीजें फील कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये मूर्खता ही है, है ना. तो भगवान हमें क्लियर समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हर इंडिविजुअल के लिए भगवान का एक डिवाइन प्लान है. हमने सिर्फ क्राइटेरिया क्या रखा होता है कि बॉडली लेवल पर अगर हमें सुख आ रहे हैं या दूसरों को सुख आ रहे हैं या हमें क्या कष्ट आ रहे हैं बॉडली लेवल पर, तो उसके बेस पर हम अपनी जजमेंट्स देते हैं, है ना. मान लो किसी के बॉडी लेवल पर कंफर्ट्स बढ़ रहे हैं, है ना, अच्छा अच्छा ही हो रहा है ना, तो हमें क्या लगता है वो कितना सुखी है यार. अपने सुख नहीं नजर आएंगे, लेकिन दूसरे को सुख हमेशा नजर आते हैं, है ना. और अगर किसी के बॉडी लेवल पर कष्ट बढ़ रहे हैं, है ना, तो हमें लगता है कि कितना दुखी है ये, या हमें किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता तो हम बातें करते रहते हैं उसके बारे में, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, है ना. तो फ्रेंड्स हम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मान लो फाइनल पेपर हमारा चल रहा है 3 घंटे का, है ना, तो हमारा फोकस हमारी शीट पर होना चाहिए फ्रेंड्स, या दूसरों की एग्जामिनेशन शीट पर होना चाहिए, है ना. और हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि हमारा ध्यान अपनी शीट पर नहीं, दूसरों की शीट पर रहता है. हमारा ध्यान हमारी अपनी लाइफ पर नहीं होता, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उस पर रहता है. और हम पूरा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कितना ज्यादा मिल गया और मुझे कितना कम मिल गया, उसकी लाइफ कंफर्टेबल और मेरी लाइफ में कंफर्टेबल नहीं है, उसके जीवन में बहुत सुख है और मेरे जीवन में बहुत सारे दुख है, है ना. अपनी लाइफ में हमारा कोई फोकस नहीं है, उसको कैसे इम्प्रूव करूं, खुद में कैसे इम्प्रूवमेंट लाऊं, इसका कोई ज्ञान नहीं है, मतलब नहीं है इस बात से, हमें कोई फोकस नहीं है. और फिर हम भगवान को ब्लेमिंग करते रहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल है, कि लोग जिम्मेदार है, भगवान जिम्मेदार है, है ना। तो सच में जिसको भगवत ज्ञान मिल जाता है, जो पंडित हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं फ्रेंड्स कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर है और मैं एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, मेरी बुद्धि लिमिटेड है ना। तो मुझे अपनी लिमिटेड बुद्धि का सदुपयोग करना है, अपनी लाइफ कैसे बेटर हो इस पर अपना फोकस लगाना है ना। बस एक बात फ्रेंड्स हमें समझनी है कि जो भी जिसके साथ भी जो भी हुआ या हो रहा है या आगे भी होगा, वो ही परफेक्ट है ना। क्योंकि फ्रेंड्स हम शरीर के लेवल पर ही लाइफ को समझ रहे होते हैं, है ना। अर्जुन चैप्टर 1 में क्यों शोक में गया, क्योंकि उसको लगा कि मैं कैसे अपने रिश्तेदारों को मारकर खुश हो सकता हूँ, क्योंकि वो आत्मा तत्व को नहीं समझ रहा था फ्रेंड्स। और हम भी आत्म तत्व को नहीं समझते, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते फ्रेंड्स कि जो भी हो रहा होता है वो किसी की सोल लेवल पर उसकी अगले लेवल की प्रमोशन के लिए हो रहा होता है। और ये बात मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है फ्रेंड्स। कुछ भी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आती हैं, चाहे अच्छी या बुरी, ये उसकी सोल लेवल पर उसके अगले लेवल की तैयारी चल रही होती है। लेकिन अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, तो अगर अच्छा हो रहा होता हम खुद इसका क्रेडिट ले लेते हैं, कुछ बुरा हो रहा होता है तो भगवान को उसका जिम्मेदार बना लेते हैं, है ना। लेकिन अब भगवान हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी है, और जो कुछ गलत हो रहा है तो शायद मैंने कुछ गलत किया हुआ है। कुछ भी हल्का सा भी गलत होता है ना, तो ऐसे लगता है कि यार कुछ तो गलत किया है मेरे जीवन में। सोचने का ढंग ही अलग हो जाता है, बदल जाता है। आप ऑब्जर्व करोगे डीपली, ध्यान से अपने साथ टाइम बिताओगे थोड़ा सा, है ना, तो आप भी ऑब्जर्व करोगे कि कई बार लगता है लाइफ टफ रही, है ना। जैसे मैं अपना बताऊं तो ऐसे लगता है कि लाइफ में स्ट्रगल्स आई है जीवन में, लेकिन आज जो भगवत ज्ञान मिल रहा है ना, उससे ये समझ आता है तो उससे कितनी लर्निंग्स मिली मेरे को। ह्यूमिलिटी आई जीवन में, दूसरों के कष्ट क्या होते हैं वो महसूस हुए जीवन में, है ना। करुणा आई, प्रेम बढ़ा जीवन में, है ना। भगवान पर नेक्स्ट लेवल का विश्वास और श्रद्धा बढ़ी, हाई लेवल का। पहले फिर भी कम होगा, लेकिन धीरे 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 भगवान से और जुड़ते गए, है ना। देखो एक बच्चा जब 9th से 10th में जाता है तो उसको 10th डिफिकल्टी लगती होगी। जैसे मैंने भी अपने बच्चे जब भी आगे नेक्स्ट क्लास में जाते थे, उनको लगता था कि यार मम्मा 9th तो बहुत इजी थी, 10th बहुत डिफिकल्ट है ना। लेकिन अगर वो फोकस से अपनी पढ़ाई करता है और अपनी रोज के रोज अपना काम कंप्लीट करता है, अपना होमवर्क भी कंप्लीट करता है, क्लास में अटेंटिव रहता है, और फिर फाइनल एग्जाम वाले दिन अपने एग्जामिनेशन शीट पर ध्यान देता है, तो नेक्स्ट क्लास में वो बहुत इजीली पहुंच जाता है, है ना। तो फ्रेंड्स हम सबकी लाइफ में मुश्किल समय आता है, सबकी लाइफ में आता है, स्ट्रगल्स आती हैं, लेकिन हमें समझना क्या है कि वो समय हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। एक तो हमें ये बात समझनी है, और दूसरा हमें क्या समझना है कि चीजें समझ भी आ रही हैं, भगवत ज्ञान मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या रखना है भाव कि हे ईश्वर मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने लाइफ में फोकस करना है कि किसके साथ क्या हो रहा है, ये जानने के लिए मैं कौन होती हूँ। क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज मेरा मूड खराब क्यों हो रहा है ना, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, मुझे तो ये भी नहीं पता। जब हम फ्रेंड्स विनम्र होते हैं और भगवान के डिवाइन प्लान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तभी हम एक्चुअली हम लाइफ को जीना शुरू करते हैं, लाइफ को समझने लगते हैं, भगवान की कृपा फील होती है। जब तक भगवान का ये दिव्य ज्ञान नहीं मिला था फ्रेंड्स, तो हम भी अपना जीवन क्या कर रहे थे, शोक में बिता रहे थे, रोने धोने में, अज्ञान में जी रहे थे, सिर्फ रोना रोना और रोना। कितने ब्लेसिंग्स मिली थी, थोड़ी स्ट्रगल्स ही मिली है लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, लेकिन उसके बारे में कोई ध्यान नहीं, जो नहीं मिला बस ध्यान तो उसमें लगा रहता था, है ना। तो हमें इस श्लोक से ये लर्निंग लेनी है फ्रेंड्स कि अगर लाइफ में कोई भी फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशंस आती हैं, तो हमें सोचना है कि ये मेरे ही किसी जन्मों के कर्मों का फल है। कोई भी सिचुएशन आई है, अगर फेवरेबल आई है या अनफेवरेबल आई है, अनुकूल परिस्थिति आई है या विपरीत परिस्थिति आई है, तो ये मेरे ही किसी जन्म के कर्मों का फल है, है ना। कोई भी फेवरेबल सिचुएशन आ गई तो ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है, घमंड में नहीं आ जाना है, और अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ गई है तो डिप्रेशन में नहीं चले जाना है, शोक नहीं करना है, है ना। कोई भी परिस्थिति है, बस ये समझना है कि चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, उसका आरंभ भी है, उसका अंत भी है, है ना। और जो भी हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है, और भगवान का डिवाइन प्लान है ना, और ये उस समय का मेरा बेस्ट था, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो, 12वां श्लोक। नक्षी जी आप पढ़ लो, हरि बोल।
हरी हरि बोल। 12वां श्लोक। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी काल में मैं, तुम या ये राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा होगा कि हम सब लोग नहीं रहेंगे। श्लोक 12वां। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी काल में मैं, तुम या ये राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा होगा कि हम सब लोग नहीं रहेंगे। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। देखो फ्रेंड, इसमें भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा का तत्व समझा रहे हैं। देखो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा फियर ना, सबसे बड़ा फियर डेथ होता है, अपनी डेथ और अपने लव्ड वंस को खोने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, है ना। और कई बार इस पॉइंट को लोग नेगेटिव भी लेते हैं कि ये डेथ का पॉइंट क्यों डिस्कस करते हैं भगवान गीता में, लेकिन ये मेन पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर हम इस पॉइंट को ढंग से समझ जाए ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है, है ना। क्योंकि अगर हमने 100 kg के डंबल्स उठाने शुरू कर दिए फ्रेंड्स, तो 20-30 kg के डंबल्स हमें फिर भारी नहीं लगेंगे, है ना। तो वैसे ही अगर हमने जो लाइफ का सबसे बड़ा फियर है डेथ, इसको ओवरकम कर लिया, इस शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। बार बार हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें बार बार ये बातें करनी पड़ती हैं कि शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है, है ना। तो फिर लाइफ की कोई भी डिफिकल्टी हमें बड़ी नहीं लगती फ्रेंड्स, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बदलाव संसार का नियम है, सिद्धांत है ना ये। हम लोग बदलाव से भी डरते हैं, चेंज से हम डरते हैं। मान लीजिए हम एक सिटी में रहते हैं, है ना, और हमें 10 साल हो गए हैं, और फिर हस्बैंड की ट्रांसफर हो जाती है दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में, तो फिर हम घबरा जाते हैं ना कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, कैसे पैकिंग करूंगी, है ना। या फिर अपने रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उनसे दूर कैसे जा पाऊंगी, है ना। फिर नई जगह के एडजस्टमेंट के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे को घर कैसा मिलेगा, लोग कैसे होंगे वहां के, नए ऑफिस के बारे में सोचते हैं, नए एटमोसफेयर के बारे में सोचते हैं, तो डरते हैं ना हम इस बदलाव से। पता है बदलाव संसार का नियम है, ठीक है, फिर भी हम डरते हैं। वैसे ही डेथ तो आनी ही आनी है, शरीर को छोड़ना ही है फ्रेंड्स, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। इतनी बड़ी बात को हम झुठलाते हैं, हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं ये तो लोगों के साथ होता है, हमारे साथ थोड़ी ऐसा होगा, है ना। जैसे मैरिज के बाद लड़कियों को अपने हस्बैंड के घर जाना होता है, तो वो इस बदलाव से डरते हैं हम लोग। अगर दूसरे शहर में जाना है तो इस बदलाव से डरते हैं हम, चेंज से हम सब घबराते हैं, है ना। लेकिन गहराई से अगर हम समझ गए ना कि घर बदलना, शहर बदलना, देश बदलना, है ना, अपने हस्बैंड के घर जाना, ये तो सब छोटी बातें हैं, छोटे छोटे बदलाव हैं, है ना। अगर मैं यही समझ गई कि मैं तो करोड़ों बार शरीर बदलती रहती हूँ क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ, है ना, अगर मैं ये बात समझ जाऊं तो लाइफ मेरी कितनी अच्छी नहीं हो जाएगी फ्रेंड। देखो युग आते हैं, युग चले जाते हैं, है ना, लोग आते हैं, लोग चले जाएंगे, लेकिन जीवात्मा आत्मा कभी नहीं बदलता, वे अविनाशी हैं क्योंकि वे परमात्मा का अंश है। हम सब आत्मा हैं और हम सब परमात्मा के अंश हैं। जीवात्मा कभी नहीं बदलता, शरीर बदलता है, शरीर तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में ये समझा रहे हैं कि मैं, तुम या ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। मतलब हम सब हमेशा से थे, ये भीष्म द्रोणाचार्य जी पहले भी थे, आज भी हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। मैं भी पहले भी था, आज भी हूँ, और भविष्य में भी रहूंगा। तुम पहले भी थे, आज भी हो, और भविष्य में भी रहोगे। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये शरीर तो नश्वर है, प्रतिक्षण बदलता है ये शरीर, लेकिन हम सब जीवात्माएं अविनाशी हैं, इटर्नल हैं, नित्य हैं, है ना। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई अगर तुम अपने रिलेटिव्स को, अपने कुटुंबियों को मार भी दोगे, तो ऐसा नहीं है कि इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये हमेशा रहेंगे, है ना। तो भगवान इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई मैं भी हमेशा था, अभी भी हूँ, और भविष्य में भी रहूंगा, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई हम सब इटर्नल हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, है ना। तो अगर हम गहराई से ये बात समझ गए फ्रेंड्स कि मैं करोड़ों बार इस शरीर को बदलती हूँ, तो छोटे छोटे बदलाव से मुझे क्यों घबराना। देखो अगर ये बात मैं गहराई से समझ जाऊं, तो क्या मैं अपने रोल बेटर प्ले कर सकती हूँ। जब मुझे पता ही लग गया कि भी मैंने इस शरीर को छोड़ना है, भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हमें ऑलमोस्ट रोज ये बात करनी पड़ेगी कि हमें शरीर को छोड़ना है ना, कोई नेगेटिव बात नहीं, सच्चाई है फ्रेंड्स, है ना। जब मुझे पता ही लग गया कि मैंने शरीर को छोड़ना है, तो क्या मैं अपने जो रोल असाइंड है मुझे एज ए हाउस वाइफ या एज ए टीचर या एज ए डॉक्टर या एज ए प्रोफेसर, कुछ भी आपको जो रोल असाइंड है घर के बाहर की जो ड्यूटीज है, उनको क्या मैं बेस्ट वे में कर सकती हूँ। अल्टीमेटली जब मुझे पता ही लग गया कि भाई हम सब ने एक दिन चले जाना है, तो किस चीज के कला क्लेश में हम पड़े हुए हैं, क्यों मुझे मेरा मेरा करना है, अपना अपना करना है, ये मेरा है, ये पराया है, चले ही जाना है ना भगवान जी के पास, तो बेटर चांस है कि मैं अपने आज को बेटर वे में जीने का प्रयास करूं, अपने आज को इम्प्रूव करूं, खुद को इम्प्रूव करूं, और आपसी कला क्लेश से ऊपर उठकर अपनी भी लाइफ बेटर करूं, और थोड़ा सा योगदान समाज कल्याण में भी दूं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन हरी बोल। तो फ्रेंड्स, आप रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी बोल। मोना दी, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही डिवाइन, वंडरफुल। आज के सत्संग में जो आपने दो श्लोक करवाए हैं उसमें मैंने ये सीखा है कि हमें किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं लगानी चाहिए कि उससे हमें सुख दुख का अनुभव हो। अगर कोई चीज, बहुत चीज हमें दुख पहुंचाती है या सुख पहुंचाती है तो वो ड्यू टू हमारी अटैचमेंट है। तो हम उस चीज को, हम अपने आप को इतना ज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञानी वो व्यक्ति है जो जिस जीवन में, जिसके जो भी आ रहा है, जिस तरीके से सुख दुख, वो उसमें एक जैसा रहता है। वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, चाहे वो दुख हो या दुख में डूब जाना हो या फिर सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाना हो। तो अपने आप को एक जैसा संभाव में रखता है। और दूसरा ये सीखा कि कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमानेंट है, इमॉर्टल है। वो हर एक चीज का विनाश है। और ऐसा नहीं है कि जो चीज आज है वो कल नहीं होगी और कल होगी तो आज नहीं है। हमें किसी की चीज के साथ इतना अटैच नहीं होना है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज मीनाक्षी जी, ब्यूटीफुली आपने दोनों श्लोकों को अच्छे से समझा दिया कि भगवान हमें अल्टीमेटली संभाव के लर्निंग्स दे रहे हैं, है ना। कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए, सिंपल बात है, चाहे अच्छी सिचुएशन आती है तो हम लोग कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तब भी ये मूर्खता के लक्षण है, और अगर तुम कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है और तुम डिप्रेस हो जाते हैं तब भी ये मूर्खता के लक्षण है। और भगवान कह रहे हैं कि भाई, जैसे कि आपने कहा कि भगवान हमें इमोर्टल की बात समझा रहे हैं, है ना। तो ये बात तो मैंने भी ऑब्जर्व किया, मतलब हमारे एक्चुअली ग्रुप में एक लड़की आई थी, बाद में मुझे पता चला कि उसने कहा कि यहाँ पे भगवद गीता में नेगेटिव बातें क्यों होती है, मतलब डेथ को लेके बात हो रही है तो ये बहुत नेगेटिव बात है। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई, हम लोग ना ये बात नहीं करना चाहते, सोचना भी नहीं चाहते एक्चुअली, है ना, जो कि लाइफ का एक सत्य है, सिद्धांत है। लाइफ एक बार मिली है और हमने चले जाना, शरीर छोड़ना है, हमने भी छोड़ना है, हमारे लव्ड वंस ने भी छोड़ना है। लेकिन क्या है कि हम ये बात बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, है ना। और अगर हम सिंपल एक बात भी, अगर ये बात भी हमने समझ ली ना भगवद गीता में, मान लो जो मेन महत्वपूर्ण लर्निंग है ये, है ना, कि हमने शरीर छोड़ देना है, तो शरीर छोड़ देना तो मतलब कि हमने सब कुछ छोड़ देना, जो भी हम मैं करते रहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें हैं, चीजों से अटैचमेंट्स है, कपड़ों से अटैचमेंट्स है, बच्चों से अटैचमेंट्स है, सब चीजें हमने छोड़ देनी है, है ना। तो अगर हम ये चीजें समझ जाते हैं, इतनी बड़ी लर्निंग हमने समझ ली अगर, तो एक तो हम लाइफ को बेटर वे में जिएंगे, है ना, कि यार छोड़ दो यार, उसमें क्यों हमें घुसना है कि जब हमने जाना है ना, जब हमने चले जाना है। लेकिन हमने करना क्या है, हमने लाइफ को बेटर जी के जाना, भगवान की गुड बुक्स में आना है, ताकि भगवान को जब भी हम मिले और हम उनकी आंखों में आंखें डाल के हम कह सकें कि भैया देखो, ये लाइफ मैंने जी है, ताकि वो मुझे कुछ ऐसी बात ना कर सके, तुम्हें एक जीवन दिया, मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य योनि दी, और तुम क्या करके आए हो, रो रो के आ गए हो, शोक में रहकर आ गए हो, है ना। तो मतलब ये एक महत्वपूर्ण लर्निंग है कि अगर हमने शरीर ही छोड़ देना है तो हमें क्यों फिर छल कपट करने हैं, क्यों हमें निंदा चुगली करनी है, क्यों हमने लड़ाई झगड़ों में रहना है, है ना। एक बेस्ट लाइफ जीनी है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है, जितना कोई हमें सुनना चाहता है तो, है ना। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स, हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। मुनादी, आज की जो मेरी लर्निंग बनी है वो ये है, आज का सत्संग बहुत डिवाइन था और साथ में एक गहराई थी, बहुत कुछ समझ में आया। तो मेरे को जितना समझ आया कि भगवान जी हमें ये समझा रहे हैं कि हमें करनी कथनी एक करनी है, कि भक्ति की सिर्फ बातें नहीं करनी है, जैसे कि अगर कहने को पंडित और बाद में हम करें कुछ नहीं, मैं अपना ही लूं, दो रोज सोचना है कि नहीं आज ये करना है, आज ये करना, तो जब करने पे आती हो तो नियम नहीं बनता है कि आज टारगेट देना है कि इतनी करनी है। तो करनी कितनी एक करनी है कि कोशिश हर घड़ी करनी है। और दूसरा ये कि हमें सोल लेवल पे कि पूजा पाठ, शुद्ध कर्म, उसमें कुछ भी आ गया, सेवा भाव आ गए या बातें, किसी के प्रति कोई भाव भी रखना है, तो हमें ये करना है कि भगवान जी को खुश करना, लोग दिखावा नहीं करना, हमें वर्ल्डली कुछ नहीं करना। और ये भी एक सत्य है, सत्संग से समझ आया कि हम आत्मा हैं। और डेथ की बात रही तो ये तो परमानेंट है, तो अगर हमें ये जानना ही होगा पहले कि हम आत्मा हैं और भगवान जी ये समझा रहे हैं। और मैंने एक बात और समझी है कि ना तो हमें प्लानिंग करने से कुछ होगा, हम बहुत सारे प्लान बना रहे हैं तो उससे भी कुछ नहीं होगा, और ना चिंता करने से कुछ होता है। तो मैंने सत्संग से आज तक यही सीखा, विश्वास। अगर मेरा मन कहीं डोल जाता है तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अपने आप को समझाती हूँ, अरे अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर कुछ भी करना, माला करना या सत्संग सुनने को, तो फिर एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि मैं ठहर जाती हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, जो हरी करेंगे वो अच्छा ही होगा, ना तो मेरी चिंता करने से कुछ होना है और ना ही प्लानिंग करने से। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज किरण जी, ब्यूटीफुली आपने भी दोनों श्लोकों को अपने एक्सपीरियंस से अच्छे से समझा दिया है ना। और इसमें मैं एक बात करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जैसे भाव की बात हम करते हैं है ना, तो भाव खाली हमने ये नहीं सोचना कि भक्ति में हमारे भाव होने चाहिए कि भक्ति कर ली बस उसमें भगवान के लिए भाव है तो बस हम बहुत ऊपर पहुंच गए है ना, और बाकी तो हमें लोगों से बात कैसे करनी है ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, गुस्से पे हमें वर्क करना है या नहीं करना है, इसका कोई भी ज्ञान नहीं है अगर है ना, तो वो भक्ति कोई भगवान को प्यारी नहीं होगी है ना। हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, 24/7 हम अपनी लाइफ कैसे बिताते हैं, भगवान उसको देखते हैं। जो वो 10-15 मिनट भगवान के पास जा रहे हैं, अगर उसमें भाव लगा भी लेंगे भगवान से तो भगवान क्या खुश होने वाले हैं उसमें, उसमें और क्या ही हमारी लाइफ बेटर होने वाली है। मान लो 10-15 मिनट हम भगवान से भाव लगाते भी हैं और हमें यही नहीं पता है कि हमें दूसरों से बात कैसे करनी है ना, दूसरों की फीलिंग्स को हम नहीं समझ पाते है ना, दूसरों को हम कुछ नहीं समझते हैं, अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी वाणी पे कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो भाव मतलब कि दूसरों के प्रति भी हमारी इंटेंशंस क्या है, घर में हेल्पर्स हैं उनके साथ हमारा कैसा बिहेवियर है ना, जो अपने नेबर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, अपने फैमिली है ना, उनके साथ हमारा कैसा बिहेवियर है, उनको तो हम बात नहीं करने दे रहे हैं, अगर गुस्से में रहते हैं हमेशा, हमें लगता है बस मैं ही परफेक्ट हूँ और वो सब गलत है। भाव हमें हर जगह पे करेक्ट करने हैं, सही करने हैं। अगर मैं गलत मुंह से निकाल रही हूँ ना तो इसका मतलब मैं अंदर भी गलत सोच रही हूँ, सिंपल बात है। तो आपके अंदर अगर अच्छा होगा तो आपके वाणी से वो कुछ निकलेगा ही नहीं ना, गलत हो ही नहीं सकता ना, कि आपके अंदर अच्छा है और आपके बाहर गलत आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर गलत है तो बाहर भी गलत ही आएगा, वाणी से भी गलत ही निकलता है फिर है ना। तो करेक्शन कहाँ करनी है हमें, वर्क कहाँ पे करना है, अंदर है ना, तभी हम अंदर सोच में परफेक्ट होंगे तो वाणी से भी हम सही चीजें बाहर निकालते हैं फिर है ना। तो भाव हमें खाली भक्ति में नहीं लगाना है, रूटीन में भी देखना है हमारे अंदर क्या भाव होता है। हम किसी से बात करते हैं, घर में हम फैमिली मेंबर के साथ हम जब बात करते हैं तो कैसे हम बात करते हैं, उस पर भी हमें वर्क करना है ना। थैंक यू सो मच किरण जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम भजन की तरफ चलते हैं, आज के भजन की टर्न। ममता जी आपकी, आप भजन गा सकते हो। हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू मोना जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन था, और आज भी जो मेरे भाव हैं, जो आपने जितना भी हमें दो श्लोक कराए वो मेरे भजन के माध्यम से आज मैं प्रकट करना चाहूंगी। सच में सत्संग जब से हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे थे ना पहले मोना जी, उस जीवन से रिलेट करके चले आपका जीवन, तो फील होता है कि नहीं सच में हमने तो अब चले जाना है। डेथ के लिए पहले डर रहता था कि जैसे भी अभी बात हो रही है, परमानेंट कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी हमारी इमोशन है कुछ भी है, तो अब वो चीजें मतलब मैटर ही नहीं करती है, क्योंकि आगे भी जो जीवन हम जी रहे थे कुछ लगता था कि नहीं बस यही जीवन है, हम खाया पिया सुख दुख जो भी है, तो नहीं सही भी अब लाइफ कैसे जीनी है अब पता चले। तो आज का मेरा भजन का शीर्षक है, कई जन्मों से बुला रही हूं। जय बांके बिहारी लाल की, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाए, नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर हो
होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझी में ही रह कर मुझे से परेदा, मुझ ही से मेरे है कर मुझे से परेदा, ये परेदा हटाना जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर मेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, दर्श दिखाना जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो बरसाने में, कभी बुलाते हो बरसाने में, अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। राधे श्याम 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल,
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ब्यूटीफुल भजन गाया आपने, बहुत भाव से गाया, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अब प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। घर घर मंदिर हर मन मंदिर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।